रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निजी मेडिकल कॉलेजों को आवासीय चिकित्सकों का बढ़ाया गया निर्वाह भत्ता निर्णय होने की तिथि से ही देना होगा चिकित्सा शिक्षा आयोग का निर्णय। मुस्तांग में 103 किलोमीटर लंबी 33 केवी प्रसारण लाइन विस्तार का काम हुआ तेज। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिन के लिए अस्थायी युद्ध विराम का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा शिक्षा आयोग ने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों को आवासीय चिकित्सकों का निर्वाह भत्ता निर्णय किए जाने की तिथि से ही देना होगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में आज हुई आयोग की 19वीं बैठक ने यह निर्णय किया है। बैठक ने यह भी कहा है कि अब आवासीय चिकित्सक अपने आंदोलन वापस लेकर अपने काम और अध्ययन पर लौट जाएं। बैठक ने निजी मेडिकल कॉलेजों की मांग को भी ध्यान में रखकर एमबीबीएस और बीडीएस की सीट संख्या और शुल्क संरचना पुनरावलोकन करने के लिए गठित 11 सदस्यों के कार्यदल द्वारा पेश की गई सुझाव सहित रिपोर्ट को स्वीकार किया है। बता दें कि आयोग की बीते माह 25 गते की 16वीं बैठक ने निर्णय किया था कि निजी मेडिकल कॉलेजों को आवासीय चिकित्सकों के निर्वाह भत्ता के रूप में उन्हें 48,737 रूपये देने होंगे। बैठक के बाद आयोग के सह अध्यक्ष शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुजी पंत ने ये जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि शुल्क पुनरावलोकन के लिए भी प्रक्रिया शुरू होगी। प्रतिनिधि सभा में सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से रक्षा मंत्री मानवीर राय ने नेपाल सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2079-80 और 2080-81 प्रतिनिधि सभा में पेश किया। सभा ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे द्वारा प्रस्तुत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2081 पर विचार करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। मंत्री पांडे ने विधेयक पर उठे सवालों के जवाब में कहा कि नेपाल की नागरिक उड्डयन सेवा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रभावी और क्रियान्वयन उन्मुख संरचना बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक नेपाली आकाश को गतिशील, सुचारू और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने नेपाल की वायु सेवाओं को भरोसेमंद और मर्यादित बनाने के लिए विधेयक में संशोधन की आवश्यकता बताई। सांसदों ने शिक्षकों के आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेज को बेस्ट फ्रेंड।
नमस्ते बाबूजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबूजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र ने आंदोलनरत शिक्षकों और चिकित्सकों की मांगें संबोधित करने के लिए सदन में विचार विमर्श करने की मांग करते हुए जरूरी सार्वजनिक महत्व का प्रस्ताव सूचित किया है। माओवादी केन्द्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे ने प्रस्ताव सूचित किया इस बात के जिक्र के साथ कि आंदोलनरत शिक्षकों के साथ साथ पेशागत अधिकारों के लिए आंदोलनरत चिकित्सकों की आवाजों की सरकार ने उपेक्षा की है। उन्होंने प्रस्ताव को सूचित किया। प्रस्ताव का समर्थन रासोपा के प्रमुख सचेतक संतोष परियार, नेकपा एस के सांसद शेर बहादुर कुंवर, आजपा अध्यक्ष प्रभु साह और राजमो अध्यक्ष चित्र बहादुर किसी ने किया था। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में हुई अनियमितताओं से संबंधित अध्ययन करने के लिए गठित उपसमिति ने संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आज नया बानेश्वर स्थित संसद भवन के शंकर हॉल में उपसमिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन ने सार्वजनिक लेखा समिति के संयोजक ऋषिकेश पोखरेल को रिपोर्ट सौंपी। ये जानकारी संसद सचिवालय के प्रवक्ता एक राम गिरी ने दी। रिपोर्ट प्राप्त करते हुए समिति के सभापति पोखरेल ने बताया कि पूरी रिपोर्ट पर समिति की आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी रापरपा के अध्यक्ष एवं सांसद राजेंद्र लिंगदेन की अध्यक्षता में पोखरा विमानस्थल की अनियमितताओं की जांच के लिए सार्वजनिक लेखा समिति ने लगभग एक साल पहले उपसमिति का गठन किया था। संयोजक लिंगदेन ने बताया कि विमानस्थल में हुई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का अध्ययन करने के लिए गठित उपसमिति ने स्थलगत निरीक्षण, सरकार वालों के साथ संवाद और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद 38 पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार की है। कास्की की अन्नपूर्णा गांवपालिका में बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वे अन्नपूर्णा गांवपालिका वार्ड नंबर 11 पोडे स्थित त्रिवेणी ताल पदमार्ग पर काम कर रहे थे जब बिजली गिरी। तेज आंधी के साथ गिरी बिजली की चपेट में आने से संखुआ सभा की सीलीचोंग गांवपालिका 2 के 44 वर्षीय भरत पुवीर राय और 18 वर्षीय महेश राय की मौत हो गई। संखुआ सभा की मकालू गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के कालो पातल में बिजली गिरने से 17 भैंसों की मौत हो गई। बारिश के साथ बिजली गिरने से मकालो 3 स्थित कालो पातल में जंगल में चराने ले जाई गई भैंसों की मृत्यु हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के इंस्पेक्टर रामकुमार लामिछानी ने दी। इंस्पेक्टर लामिछानी ने बताया कि बिजली गिरने से मकालो 3 के पुष्पलाल भंडारी और प्रेम प्रसाद भंडारी की कुल 17 भैंसों की मौत हुई है। हिमालयी जिला मुस्तांग में 33 केवी प्रसारण लाइन विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ाया गया है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने मुस्तांग की थासांग गांवपालिका वार्ड नंबर 2 कोवांग से उपल्लो मुस्तांग को जोड़ने के हिसाब से लोघेकर दामोदर कुंड गांवपालिका चरांग तक 103 किलोमीटर की दूरी में 33 केवी प्रसारण लाइन विस्तार को आगे बढ़ाया गया है। बताने के चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत से सटे उपल्लो मुस्तांग के लोमानथांग स्थित कोरला नाका तक बहरहाल 11 केवी विद्युत क्षमता वाली प्रसारण लाइन संचालित है। जुमला की तीला गांवपालिका में आयोजित 4 दिवसीय विशेषज्ञ सेवा सहित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 765 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की हैं। वैशाख 11 गते से 12 गते तक घोड़े महादेव स्वास्थ्य चौकी में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 261 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं वैशाख 13 गते से 14 गते तक कुडारी स्वास्थ्य चौकी में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 504 लोगों ने सेवाएं प्राप्त की। तीला गांवपालिका स्वास्थ्य शाखा के फोकल पर्सन उत्तम देवकोटा ने ये जानकारी दी। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सक्रिय भागीदारी से तीला गांवपालिका में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में स्त्री रोग, हड्डी एवं नसों के रोग तथा सामान्य चिकित्सा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी नेपाल और बीबीसी मीडिया एक्शन नेपाल के सहकार्य में मौसम तथा आपदा संचार संबंधी 3 दिवसीय कार्यशाला आज से शुरू हुई है। रेडियो नेपाल केंद्रीय प्रसारण कार्यालय सिंहदरबार में शुरू हुई कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को पीएसबी नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने संबोधित किया। कार्यशाला में रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन में कार्यरत 25 से अधिक संचारकर्मी सहभागी हैं। बैतड़ी जिले की दोगड़ा केदार गांवपालिका वार्ड नंबर 4 शाही टोल के 150 घर परिवार पेयजल से वंचित हो गए हैं। नानखोली से लिफ्ट मार्फत संचालन में लाई गई पेयजल परियोजना की मरम्मत न होने के कारण शाही टोलवासी पेयजल से वंचित हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिन के लिए अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया है। रूस के मुताबिक ये युद्ध विराम 8 मई की सुबह से शुरू होकर 11 मई तक चलेगा। पुतिन ने यह फैसला मानवीय कारणों से और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर लिया है। अब तक यूक्रेन ने इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन भी युद्ध विराम का पालन करे। अगर यूक्रेन युद्ध विराम तोड़ता है तो रूसी सेना उसका सख्त और प्रभावी जवाब देगी। बयान में कहा गया है, रूस ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है ताकि यूक्रेन संकट की मूल जड़ को खत्म किया जा सके। इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले रूस ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की थी। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने दावा किया है कि उत्तरी वजीरिस्तान में एक अभियान के दौरान 17 और चरमपंथी मारे गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक 27 और 28 अप्रैल की मध्य रात्रि को सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास हसन खेल क्षेत्र में एक अभियान चलाया जिसमें ये चरमपंथी मारे गए। आईएसपीआर का कहना है कि ये आतंकवादी विदेशी ताकतों के इशारे पर पाकिस्तान में गतिविधियां चला रहे थे। सेना के अनुसार मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। आईएसपीआर के अनुसार पिछले तीन दिनों में चलाए गए अभियानों में कुल 71 चरमपंथी मारे गए हैं और सुरक्षा बल पाकिस्तान के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार और दृढ़ है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निजी मेडिकल कॉलेजों को आवासीय चिकित्सकों का बढ़ाया गया निर्वाह भत्ता निर्णय होने की तिथि से ही देना होगा चिकित्सा शिक्षा आयोग का निर्णय। मुस्तांग में 103 किलोमीटर लंबी 33 केवी प्रसारण लाइन विस्तार का काम हुआ तेज और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिन के लिए अस्थायी युद्ध विराम का किया ऐलान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।